अपूर्व, अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी, जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।
सभी श्रोताओं को नमस्कार। पूर्वोत्तर डायरी के इस नए अंक में आप सभी का स्वागत है। हर रविवार शाम 5:30 बजे इस कार्यक्रम में हम मिलते हैं और पूर्वोत्तर राज्यों की झलक आपके लिए लेकर आते हैं। आज फिर इस कार्यक्रम में हम पूर्वोत्तर राज्यों की रंगारंग संस्कृति से आपको परिचित करवाने के लिए हम उपस्थित हैं। आपके साथ मैं हूं कमल कुमार प्रजापति।
पूर्वोत्तर डायरी।
हाल ही में सिक्किम में नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ और कई प्रतिभाशाली युवाओं ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और विजेता भी बने। हमारे संवाददाता दिलीराम दुलाल ने गंगटोक से हमें ये रिपोर्ट भेजी है, जिसमें उन्होंने इस नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल प्रतियोगिता के विजेताओं के बारे में बताया है और साथ ही इस प्रतियोगिता के आयोजन के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी है। तो आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
मणिपुर की ईशानी मैत्रम और आसाम की विशाल खैदम ने हाल ही में सिक्किम गंगटोक में आयोजित नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल सौंदर्य प्रतियोगिता के 5वें संस्करण के ग्रैंड फिनाले में क्रमशः महिला और पुरुष वर्ग का खिताब अपने नाम किया। ईशानी मैत्रम को महिला वर्ग में मिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल का ताज पहनाया गया। उन्होंने मिस फोटोजेनिक का उप खिताब भी जीता और पुरस्कार स्वरूप उन्हें डियो स्कूटर सहित अन्य पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रतियोगिता के बाद ईशानी मैत्रम ने कहा, मेरा सभी युवाओं के लिए संदेश सरल है, जो भी अवसर आपके रास्ते में आए उसे जरूर अपनाएं। बड़े सपने देखना कभी बंद मत कीजिए। कभी कभी अवसर छोटे या अनिश्चित लग सकते हैं, लेकिन वही आपको वहाँ तक पहुँचा सकता है जहाँ आपने कभी कल्पना भी नहीं की होती। आप कभी नहीं जानते कि कौन सा अवसर आपकी जिंदगी बदल सकता है, इसलिए जब भी मौका मिले हिचकिचाए नहीं, उन्हें अपनाएं और अपना सर्वश्रेष्ठ दे।
नमस्ते सिक्किम, आई एम द विनर ऑफ मिस नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल सीजन 5 2026 and I would like to say a very very heartfelt gratitude to all the organization giving us this wonderful opportunity. And from my experience, I have always wanted to visit Sikkim. Finally, I got the chance to come here and also represent my state, and also I got to win this title as Miss Northwest India Supermodel, and I'm very happy to win this title and also to represent Northeast in India level. And I hope to hold this title throughout this journey, and I'm willing to represent myself and the Northeast people to other platforms also. So I want to say a message to all the youths to grab the opportunity whenever it comes to their way, to not stop, to dream bigger. Whatever opportunity that comes in your way, just grab it. You don't know what it might lead you to. So yeah, that would be my message to all the youngsters and all the people around.
वहीं पुरुष वर्ग में असम के विशाल खैदम सिंघा को मिस्टर नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल घोषित किया गया। प्रतियोगिता में पूर्वोत्तर भारत के विभिन्न राज्यों से आए प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनका मूल्यांकन आत्मविश्वास, व्यक्तित्व, मंच उपस्थिति और समग्र प्रदर्शन के आधार पर किया गया। विशाल खैदम सिंघा ने आयोजक को आभार व्यक्त करते हुए कहा कि
नमस्ते सब जनलाय, आई एम विशाल, द विनर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल सीजन 5। अगर कुछ और मतलब अलग मैं अगर बोलना चाहूँ तो जो प्राइस मनी, उसके बाद हम लोग का जो मतलब ऐसे विनर्स जो भी मिला है हम लोग को, ऐसा शायद से इंडिया में कोई भी पेजेंट्री में नहीं मिलता है। खासतौर पर मुझे ऐसे विनर, मुझे एक बाइक मिला है और मेरे दोस्तों को यहाँ पे दे गॉट प्राइस मनीस, और उसके साथ ही जो एटोमी भी है, एटोमी जो कि कोरिया का बहुत बड़ा ब्रांड है, उनसे भी हम लोग को बहुत बहुत मतलब महंगा जो गिफ्ट सेट्स भी, नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा जो प्लेटफॉर्म है वो शायद से नॉर्थ ईस्ट इंडिया सुपर मॉडल को ही मैं बोलूंगा, क्योंकि हमें जिस तरह से ट्रीटमेंट मिला है यहाँ पे, नॉट जस्ट एज मॉडल्स बट एक इंसान के तौर पे हम लोग को ट्रीट किया गया, और इतना अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना कुछ हम लोग को सीखने को मिला यहाँ पे। सर रिजू भी थे, मैम जो ग्रूमर थी हम लोग का, नीलू मैम, उन्होंने भी जो हम लोगों को जो नॉलेज दिया है, कैसे बात करना है, कैसे टेबल मैनर्स वगैरह, ये तो हमें किसी भी पेजेंट्री में हम लोगों को कभी सिखाया भी नहीं गया था, और यहाँ आके मतलब हम लोगों ने ये चीज सीखा है कैसे वर्क करना है, कैसे रैम वर्क करना है, और कैसे मतलब पेजेंट्री के लिए थोड़ा सा अलग होता है वो सब चीजें। तो सब मतलब हम लोग जितना भी नॉलेज यहाँ पे हम लोगों ने गेन किया है वो दूसरे पेजेंट में हम लोग कभी गेन भी नहीं। अमेजिंग अपॉर्चुनिटी टू शोकेस नॉट जस्ट आवर टैलेंट्स बट ऑल्सो रिप्रेजेंट आवर कल्चर ऑन द वर्ल्ड स्टेज, एंड ट्रूली दिस हैज बीन सच ए ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी फॉर अस। When we came here, we were just like Vyavna ma'am said, we were just individuals, but we are going back to our homes as completely new people and as winners of this amazing event. And I also want to show my special gratitude and thankfulness to all the people, all my family members, all my friends who have been supporting me throughout this journey, and their commitment towards my journey was something that I always required, and it has helped me a lot going forward. And to my colleagues as well, to my contestants, they have all been great individuals. They are all dynamic young people, and this is not the, and hopefully this is not the end for any one of us. And I want to represent India on the world stage, not just Northeast. And I hope that my friends, my fellow teammates as well, they keep moving forward in this journey. And just a small message for everyone, all the youths of our wonderful Northeast. Our lives are nothing without our failures. We should accept it with integrity and keep moving forward, keep working harder, and never stop dreaming.
स्मरण होस् सौन्दर्य प्रतियोगिताका यह पाँचवा संस्करण पूर्वोत्तर क्षेत्र के उभरते मॉडलों को अपनी प्रतिभा दिखाने और फैशन तथा मॉडलिंग की दुनिया में आगे बढ़ने का एक महत्वपूर्ण मंच प्रदान करता है। आयोजकों ने दोनों विजेताओं को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। आकाशवाणी पूर्वोत्तर डायरी के लिए गांतोक से मैनाक चटर्जी के साथ मैं दिलीराम दुलाल।
श्रोताओं, हमने पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम में कई बार पूर्वोत्तर भारत की खेल प्रतिभाओं के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा की है, लेकिन आज एक विशेष रिपोर्ट हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्वोत्तर भारत के परंपरागत खेलों के बारे में, कि वहां के खेलों की परंपराएं किस तरह आज भी जीवित हैं, और न सिर्फ जीवित हैं बल्कि ये परंपरागत खेल आज मुख्य धारा के खेलों का हिस्सा बनते जा रहे हैं, और खेलो इंडिया जैसी प्रतियोगिताओं में इन खेलों को स्थान दिया जा रहा है। तो आइए ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
पूर्वोत्तर भारत की विरासत में यहाँ के खेल भी महत्वपूर्ण पहलू हैं। ये खेल आज भी अपनी उसी कुशलता और उत्साह के साथ यहाँ के युवाओं के बीच जीवित हैं। शुरुआत में हम बात करते हैं मणिपुर के सगोल कांगजी से। ये आज के पोलो का प्राचीन और कठिन रूप है। इसे खेलने के लिए छोटे कद के लेकिन फुर्तीले मणिपुरी पोनी घोड़ों का उपयोग किया जाता है। खेल की खासियत ये है कि खिलाड़ी घोड़े पर सवार होकर एक लंबी छड़ी जिसे कांगजेई कहते हैं उससे जड़ से बनी गेंद को मारते हैं। इसमें पोलो की तरह कोई गोल पोस्ट नहीं होता बल्कि गेंद को मैदान की अंतिम रेखा के पार ले जाना होता है। ये खेल संतुलन और घुड़सवारी की चरम परीक्षा है। मणिपुर का ही एक और अनोखा खेल है युबी लाकपी, जिसे रग्बी का पारंपरिक रूप माना जाता है। इसमें सात सात खिलाड़ियों की दो टीमें होती हैं। खेल शुरू होने से पहले एक नारियल को तेल में डुबोया जाता है ताकि वो चिकना हो जाए। खिलाड़ी का लक्ष्य इस चिकने नारियल को अपने सीने से सटाकर प्रतिद्वंदी टीम के घेरे को पार करना होता है। नारियल बहुत फिसलन भरा होता है, इसलिए इसे पकड़ना और बचाकर भागना अत्यधिक शारीरिक शक्ति और पकड़ की मांग करता है। नागालैंड की पहाड़ियों में सबसे प्रमुख खेल केनी यानी नगा कुश्ती है। ये खेल तकनीक के मामले में बेहद दिलचस्प है। दो पहलवान एक दूसरे की कमर पर बंधे एक कपड़े के बेल्ट को मजबूती से पकड़ते हैं। खेल का मुख्य नियम ये है कि आप इस बेल्ट की पकड़ नहीं छोड़ सकते। जीत तब मानी जाती है जब एक पहलवान अपने प्रतिद्वंदी के शरीर का कोई भी हिस्सा घुटने से ऊपर जमीन पर टिका दे। इसमें पैर फंसाने की तकनीक और अचानक दिए गए झटके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी तरह मिजोरम का इनसुकनौर खेल सीधा शारीरिक बल का मुकाबला है। इसमें लगभग 8 फीट लंबा एक लकड़ी का लट्ठा रॉड होता है। दो खिलाड़ी इस लट्ठे के दोनों सिरों को अपनी बगल में दबाते हैं और बीच में बने एक घेरे के अंदर खड़े होते हैं। खेल का उद्देश्य अपनी पूरी ताकत से प्रतिद्वंदी को धकेलकर घेरे से बाहर करना होता है। इसमें पैरों की मजबूती और पीठ का निचला हिस्सा सबसे ज्यादा काम आता है। मैदानी इलाकों की बात करें तो असम का धोप खेल एक रणनीतिक खेल है। इसमें धोप नाम की रबर की गेंद जैसी एक चीज का इस्तेमाल किया जाता है। मैदान को दो हिस्सों में बांटा जाता है और खिलाड़ी गेंद को हवा में उछालकर प्रतिद्वंदी टीम के खिलाड़ी को छूने की कोशिश करते हैं। अगर गेंद खिलाड़ी को छू लेती है तो वो आउट माना जाता है। ये खेल फुर्ती और सटीक निशानी पर आधारित है। वहीं मेघालय में पारंपरिक तीरंदाजी का स्वरूप बहुत ही संगठित है। यहाँ बांस के बने धनुष और तीरों का उपयोग होता है। निशानेबाज लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पर रखे एक बेलन के आकार के लक्ष्य पर निशाना साधते हैं। इसमें केवल निशाना लगाना ही महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर अधिकतम तीर चलाने की गति भी देखी जाती है। ये एकाग्रता और सांस पर नियंत्रण का खेल है। अरुणाचल प्रदेश में हिनम नारनम एक अलग तरह की रस्सा कशी है। इसमें रस्सी के बजाय खिलाड़ी एक दूसरे के हाथों को पकड़कर या लकड़ी के डंडे का सहारा लेकर विपरीत दिशा में खींचते हैं। इसके अलावा यहाँ बंबू क्लाइंबिंग यानी चिकने और लंबे बांस पर बिना किसी सहारे के चढ़ने की प्रतियोगिता होती है, जिसमें शरीर के ऊपरी हिस्से की ताकत और पकड़ का परीक्षण होता है। त्रिपुरा और अन्य क्षेत्रों में गोलाम चुट जैसे खेल खेले जाते हैं जो काफी हद तक पकड़म पकड़ाई जैसे हैं, लेकिन इनके नियम बहुत सख्त होते हैं। जहां एक राजा या मुख्य खिलाड़ी को बचाते हुए पूरी टीम को सुरक्षित स्थान तक पहुंचना होता है। पूर्वोत्तर के ये तमाम खेल अब केवल मनोरंजन तक सीमित नहीं है, इन्हें खेलो इंडिया जैसे राष्ट्रीय कार्यक्रमों के तहत एक मानक ढांचे में लाया जा रहा है। अब इन खेलों के लिए रेफरी, निश्चित समय सीमा और स्कोरिंग के डिजिटल तरीके अपनाए जा रहे हैं। राज्यों की खेल नीति में बदलाव करके इन स्वदेशी खेलों के विजेताओं को भी अब कई तरह से लाभ देने का प्रयास किया जा रहा है। पूर्वोत्तर अपनी पारंपरिक खेल विधाओं को आधुनिक खेल विज्ञान के साथ जोड़कर एक नई पहचान बना रहा है, जिससे न केवल स्थानीय प्रतिभा को मुख्य धारा का मंच मिल रहा है बल्कि हमारी प्राचीन विधाएं भी लुप्त होने से बच रही हैं। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
मिजोरम की राजधानी आइजोल का 136वां स्थापना दिवस बड़े उत्साह के साथ बीते दिनों मनाया गया और ये एक ऐसा अवसर था जब शहर में 4 दिनों तक रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और नगर निगम के इस आयोजन में बढ़ चढ़ कर मिजोरम वासियों ने हिस्सा लिया। दरअसल मिजोरम के इस शहर आइजोल का एक अपना इतिहास और विकास यात्रा है और इस स्थापना दिवस के आयोजन के माध्यम से ये भी दर्शाने का प्रयास किया गया कि किस तरह से आइजोल एक उन्नत और विकसित शहर के रूप में उभरा है और किस तरह से देश के अन्य शहरों के साथ कदम से कदम मिलाकर विकास यात्रा में ये शहर भी आगे बढ़ रहा है। तो आइए हमारे मिजोरम संवाददाता की ये खास रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
मिजोरम की राजधानी आइजोल ने अपना स्थापना दिवस इस बार खास अंदाज में मनाया।
इस अवसर पर आइजोल नगर निगम ने कई दिनों तक चलने वाला एक रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया। आइजोल की स्थापना वर्ष 1890 में हुई थी। पहले इस स्थान को लालसा वोंगा गांव के नाम से जाना जाता था और बाद में इसे आइजोल फोर्ट कहा गया। 25 फरवरी 1890 को शहर की स्थापना का आधिकारिक दिन माना जाता है। आज आइजोल में मिजोरम की लगभग आधी आबादी रहती है। भारत के कई पुराने शहरों की तुलना में आइजोल अपेक्षाकृत नया शहर है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यहाँ काफी विकास हुआ है। शहर की आबादी बढ़ी है और शहरी ढांचे में भी सुधार हुआ है। हाल के वर्षों में यहाँ आने वाले पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी है। लोग यहाँ की समृद्ध संस्कृति, स्थानीय लोगों के आत्मीय व्यवहार और आपसी सम्मान की भावना से काफी प्रभावित होते हैं। खास बात ये भी है कि शहर के लोग यातायात नियमों का बहुत अनुशासन के साथ पालन करते हैं। आइजोल दिवस के अवसर पर आइजोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 3 दिनों तक कई कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों और बाहर से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों की उत्साहपूर्ण भागीदारी को देखते हुए कार्यक्रम को एक दिन और बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा लोग इसमें शामिल हो सकें। शहर के मेयर पू लालरी निंगा साइलो ने समारोह में बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी पर खुशी जताई। उन्होंने बताया कि आइजोल में वर्ष 2010 में म्युनिसिपल काउंसिलिंग की स्थापना हुई थी, जिसे बाद में वर्ष 2015 में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में बदल दिया गया। मेयर ने कहा कि शहर को साफ सुथरा और बेहतर बनाने के लिए कॉरपोरेशन लगातार काम कर रहा है। इसके लिए स्थानीय परिषदों के साथ मिलकर कई पहल की जा रही है ताकि आइजोल देश के अन्य शहरों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ सके। इस आयोजन में शामिल कई लोगों ने कहा कि कार्यक्रम का समय भी बहुत अच्छा रहा, क्योंकि इन दिनों स्कूलों में छुट्टियां चल रही थी। ऐसे में परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने का अच्छा अवसर मिला।
My name is Lan Nuntluanga and I'm just a visitor over here for the Aizol day and it's been an honor. And we are very thankful for the Aizol Municipal Corporation for hosting such a wonderful event over here. And it's been a great opportunity for the vendors and the local market as well. A lot of visitors came and the tourists came from last year's. And since we have a train connection, it's been a surplus. I think we surplus Shillong as well, with 70% of tourists over here. So it's been a great opportunity for the vendors and the local markets to let them see what's the real Mizo and the Mizoram production is over here. So that's quite of it.
स्थानीय दुकानदारों ने भी इस पहल की सराहना की। उनका कहना था कि इस तरह के आयोजन से शहर के लोगों को थोड़ा आराम और मनोरंजन का मौका मिलता है और सभी लोग मिलकर उत्सव का आनंद लेते हैं।
Hello, my name is Afi. I am so glad that Aizol Municipal Corporation is hosting Aizol Day, the 136th year. Right now, I run this stall at the celebration venue where I sell bamboo baskets and accessories. I sell quite well, and I'm thankful that I am given a chance like this to earn money. This is a great blessing for small business owners like me. I noticed that people are also enjoying it a lot. Thank you.
कार्यक्रम के दौरान राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले 94 संगठनों और व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। इसके अलावा यहां एक शानदार संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। साथ ही खाने पीने और विभिन्न सामानों के कई स्टॉल लगाए गए, जिससे पूरे शहर में उत्सव का माहौल देखने को मिला। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी आइजोल से आइजैक की रिपोर्ट के साथ मैं प्रशांत कुमार। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई के 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर अगरतला में एक खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ट्राई के द्वारा साइबर जागरूकता और तमाम ऐसे जागरूकता कार्यक्रम इस दौरान चलाए गए जिससे वहां के लोगों को बहुत लाभ मिला। तो आइए ट्राई के इस 29वें स्थापना दिवस के अवसर पर चलाए गए उपभोक्ता जागरूकता कार्यक्रम के संबंध में हमारे संवाददाता सुमन भट्टाचार्य की ये विशेष रिपोर्ट आपको सुनवाते हैं।
भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई की स्थापना की 29 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने हाल ही में त्रिपुरा में उपभोक्ता जागरूकता से जुड़ा एक कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम पश्चिम त्रिपुरा के अगरतला स्थित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज हापानिया में आयोजित किया गया। ये आयोजन देश भर में एक साथ आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम की श्रृंखला का हिस्सा था। आज के समय में दूरसंचार तकनीक ने हमारे जीवन को बहुत आसान बना दिया है। मोबाइल फोन और इंटरनेट की मदद से कई तरह की सेवाएं कुछ ही क्षणों में हमारी अंगुलियों तक पहुंच जाती है। इससे लोगों की बहुत सुविधा मिली है, लेकिन इसके साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आई है। खासकर साइबर ठगी जैसी समस्याएं भी तेजी से बढ़ रही है। थोड़ी सी लापरवाही भी लोगों को परेशानी में डाल सकती है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ट्राई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय ने ये जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इसका उद्देश्य लोगों को दूरसंचार सेवाओं के सही उपयोग के बारे में जानकारी देना और उनसे जुड़ी समस्याओं को समाधान के बारे में जागरूक करना था। कार्यक्रम में कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के सलाहकार कौशिक मुखर्जी ने इसके उद्देश्य के बारे में विस्तार से जानकारी दी।
वी आर ऑर्गेनाइजिंग दिस कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम टू एजुकेट द कॉमन कंज्यूमर्स एज टू हाउ दे कैन टेक द फुल एडवांटेज ऑफ द टेलीकॉम सेक्टर। दे शुड नो देयर राइट्स।
कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों ने इंटरनेट तकनीक के सही उपयोग और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जागरूकता बढ़ाने की इस पहल की सराहना की। इस दौरान ट्राई के कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय के वरिष्ठ अनुसंधान अधिकारी नीलय दत्ता ने उपस्थित लोगों के सामने एक विशेष पावर पॉइंट प्रस्तुति भी दी जिसमें दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई।
ट्राई इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ कंट्री, इज द रेगुलेटरी बॉडी ऑफ टेलीकॉम सेक्टर एंड एज वेल एज ब्रॉडबैंड एंड केबल सर्विस सेक्टर आल्सो। सो इन वी आर एम्फसाइजिंग ऑन हाउ टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ट्राई हैज डेवलप्ड अ लॉट ऑफ मोबाइल applications through which consumers can give their ideas and as well as their experience they can through this and in this program we have also delivered the program on issues on unsolicited commercial communications and as well as several cyber crime related issues we will also focus on this.
इस कार्यक्रम के जरिए लोगों को दूरसंचार सेवाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और उनके समाधान के बारे में जानकारी मिली। साथ ही ये भी समझाया गया कि साइबर अपराध से बचने के लिए किस तरह सतर्क रहना जरूरी है। कार्यक्रम में मौजूद विद्यार्थियों ने भी इसमें काफी रुचि दिखाई और उनके उत्साह से ये साफ महसूस हुआ कि ऐसे कार्यक्रम उनके लिए काफी उपयोगी साबित होते हैं।
दिस प्रोग्राम हेल्प अस टू अंडरस्टैंड टेलीकॉम रेगुलेशंस, डिजिटल सेफ्टी एंड कंज्यूमर राइट्स एंड दिस ट्राई हेल्पिंग अस टू गाइडिंग अस अबाउट कंज्यूमर राइट्स एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी एंड ऑल।
We have few people for cyber crime for this workshop. They came here to give us awareness for cyber crimes and upcoming cyber bullying. Through this, we can help the citizens. They can help us how to know about the cyber crimes and how can we make people aware about these crimes. So we cannot be a victim and can proudly and can bravely we can deal with the cyber bullying. So for this, we are gathered here and.
कुल मिलाकर इस तरह के कार्यक्रम में ये स्पष्ट होता है कि ट्राई आम लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लगातार काम कर रहा है। उपभोक्ताओं को जागरूक करने और सुरक्षित डिजिटल वातावरण बनाने की दिशा में ऐसे प्रयास आगे भी जारी रहेंगे। विकसित भारत के निर्माण में भी इस तरह की पहल महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए सुमन भट्टाचार्य, आकाशवाणी अगरतला।
दोस्तों, हमारे संवाददाता मनोज कुमार शर्मा ने ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से हमें खास रिपोर्ट भेजी है और इस रिपोर्ट में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश की 8वीं विधानसभा के 6ठे सत्र के ब्यौरे के बारे में हमें विस्तार से बताया है कि क्या कुछ इस सत्र में हो रहा है। तो आइए आपको ये खास रिपोर्ट सुनवाते हैं।
अरुणाचल प्रदेश विधानसभा में 8वीं विधानसभा के 6ठे सत्र की शुरुआत हुई। ये इस वर्ष का दूसरा विशेष सत्र है जिसका आयोजन आगामी 12 मार्च 2026 तक किया जाएगा। सत्र में 7 विधेयक पेश किए गए, साथ ही एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी रखा गया है और कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी विधायकों द्वारा पेश किए गए। विधायक कुमार बाई द्वारा निजी सदस्य प्रस्ताव रखा गया जिसके तहत वन्य जीवों के संरक्षण के साथ ही मानव वन्य जीवों के संघर्षों को कम करना है। श्री बाई ने कहा है कि वन्य जीवों को बचाने के लिए हमें सिक्किम और हिमाचल के मॉडल का पालन करना चाहिए क्योंकि शिकार और हत्याओं को रोकने के लिए और भी सख्त उपायों को लागू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा जैसे राज्य में हॉर्नबिल के संरक्षण के लिए कदम उठाए गए हैं वैसा ही वन्य जीवों के लिए भी जाना चाहिए। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लोग अरुणाचल में प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने आते हैं और प्रकृति की सुंदरता का एक बड़ा हिस्सा वन्य जीवों की मौजूदगी से आती है। इस संबंध में एक निजी सदस्य प्रस्ताव यानी प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन पारित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में डिप्यूटी स्पीकर तेजाम पोंगते ने कहा है कि नियमों के अनुसार एक विधानसभा समिति का गठन किया जाएगा। ये समिति अध्ययन करेगी और अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद अध्यक्ष विधेयक को पारित करने के लिए इसे सदन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। विधानसभा सत्र में 7 विधेयक पेश किए गए जिनमें अरुणाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश स्थानीय प्राधिकरण दल बदल निषेध संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश शहरी और ग्रामीण नियोजन संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों के वेतन भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2026, अरुणाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन संशोधन विधेयक 2026 एवं अरुणाचल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के स्थानांतरण और पदस्थापन विनियमन और प्रबंधन विधेयक 2026 शामिल है। इस बीच विधानसभा का सत्र सोमवार को पुनः शुरू किया जाएगा। पूर्वोत्तर डायरी के लिए आकाशवाणी ईटानगर से मैं मनोज कुमार शर्मा।
एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
तो श्रोताओं, आपको ये कार्यक्रम उम्मीद है अच्छा लगा होगा और आपके सुझाव हमें हमेशा मिलते रहते हैं जो हमारा प्रोत्साहन बढ़ाते हैं। आप पूर्वोत्तर डायरी कार्यक्रम के बारे में अपने सुझाव अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाते रहिए। हमारी ईमेल आईडी है airnsdtalks@gmail.com। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। इन माध्यमों से आप अपने विचार हम तक भेजते रहिए और इस कार्यक्रम को हर सप्ताह इसी तरह से सुनते रहिए। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुमूल्य हैं। श्रोताओं, आपसे फिर मुलाकात होगी पूर्वोत्तर डायरी के एक नए अंक में अगले सप्ताह। मुझे यानी कमल कुमार प्रजापति को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
फूल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। फूल के खिल खिलाती सावन बरसाती, हंस रही है कौन ये मोगरी जगाती, ओ मोगरी जगाती। एक कली दो पत्तियां नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में।
आलेख व संकलन कमल कुमार प्रजापति, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी।
उत्तर पूर्व अद्भुत, रोमांचक और मनोहारी, उसकी छटा को समेटती रेडियो डायरी जिसके पन्ने खुलते हैं हर रविवार शाम 5:30 बजे गोल्ड पर। पूर्वोत्तर डायरी।